Eaton, 17th August, Saturday, 11 a.m. to midnight. Tickets start from $15. For sponsorship and stall booking, call Vakas Sayed, 647-712-7000. That's 647-712-7000. Don't miss it.
डाइवोर्स या कस्टडी दी लड़ाई जिंदगी दी सब तो औखी लड़ाई हुंदी है, क्योंकि तुसी उस शख्स नाल लड़ रहे हुंदे हो जिस नाल तुहाडा घर परिवार ते तुहाडे बच्चे सांझे ने। उस वक्त कई सवाल उठते ने कि प्रॉपर्टी किस कोल जाएगी, कस्टडी किस नूं मिलेगी, ते जिंदगी दी सब तो प्यारी दौलत बच्चे किस कोल रहनगे।
SNS लॉयर्स को इन सारे सवालों दे जवाब ते तुहाडे हक ले लड़न वास्ते लियाकत है। अपने हक जानने लई या सलाह लैण लई अज ही SNS लॉयर्स नूं कॉल करो 416-655-2000।
है जमाना है ना, कोई दीवाना है कोई जान से गया साहिना ना थे।
Hi Canada, assalamu alaikum, this is Bilal Ashraf
and this is Mahira Khan and our film Superstar is coming out this Eid al-Adha.
So go and get your tickets now,
right now,
and see us on the big screen.
Pakistan Business Association of Hamilton presents Pakistan Independence Day Celebration. Full fun with live music and entertainment. Lucky draw for laptop, TV, Umrah ticket and more on August 16 Friday at the Grand Olympia, 660 Barton Street East, Stony Creek. Door opens at 5:30 p.m. For tickets, contact Naeem Malik 905-383-9292, 905-383-9292.
कैनेडियन स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन मार्केटिंग ला रहा है क्रिकेट के पुरजोश शायकीन के लिए पहला मेगा इवेंट, ताजा फर्स्ट कैनेडियन इंटरनेशनल टेप बॉल क्रिकेट चैंपियनशिप।
सितंबर 14 और 15 CAA सेंट्रल ब्रैम्पटन में आ रहा है ताजा फैंटास्टिक फॉल फेस्ट,
रंगारंग तफरी से भरपूर शानदार प्रोग्राम,
टिकट फ्री, पार्किंग फ्री। स्टॉल बुकिंग या स्पॉन्सरशिप के लिए राबता कीजिए
416-560-8583।
कोई मांगे मीठा कोई कहे नमकीन, एक बात तो पक्की है ये सब है इसके शौकी, ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
राजधानी स्वीट्स एंड रेस्टोरेंट के प्योर वेजिटेरियन लजीज खाने जिसके स्वाद के सभी है दीवाने, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ आकर खाइए या फिर केटरिंग करवाइए, मिठाइयाँ ऐसी की मजा आ जाए।
ये है राजधानी राजधानी राजधानी।
मल्टीपल लोकेशंस इन GTA। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन विजिट rajdhanisweets.ca।
चांदनी चौक चाट चटोरी गली में, आमची मुंबई पाव भाजी चटोरी गली में, कलकत्ता भेलपुरी चटोरी गली में, जलेबी तलेगी चटोरी गली में, कपल का नरम टक्का चटोरी गली में।
Enjoy कीजिए 12 food stations and up to 150 items at Chattori Gully Food Festival, Tandoori Flame Mississauga and Brampton. Niyat phislegi jab jeeb lap lap aayegi, jab janta Tandoori Flame mein aayegi. Tandoori Flame, sab ke liye kuch na kuch.
अभी जिन्ना मिटोना होवे थोड़ी बिना नहीं हूँ जचता, थोड़ी दे फर्नीचर नाल कोना कोना सजदा।
सोडी फर्नीचर कंपनी साड़ी कम्युनिटी दी सब तो पहली ते वड्डे शोरूम्स वाली कंपनी है, जेडी के वधिया 100 सार फर्नीचर ते डेकोरेटिव आइटम बहुत ही रीजनेबल प्राइसेस ते वेच रहे हैं। 4 सालां लई बिना व्याज ते फाइनेंसिंग दा भी प्रबंध। ब्रैम्पटन च 74 डेवन रोड जां 142 कैनेडी रोड साउथ ते पहुंचो। दोनों लोकेशंस दा इक्को ही नंबर 9058747171।
इंश्योर प्रो फाइनेंशियल सर्विस से फजल वदू, जिनका है 27 साल से लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस। आजकल के दौर में तो कुछ भी फ्री नहीं मिलता, इवन मशवरा भी। सवाल छोटा हो या बड़ा आप कॉल कर लीजिए, मशवरे की कोई फीस नहीं। चाहे लेनी हो लाइफ इंश्योरेंस, क्रिटिकल, डिसेबिलिटी, ट्रैवल और अदर इंश्योरेंस, टैक्स प्लानिंग और रिटायरमेंट प्लानिंग के लिए देर ना करें कि इससे पहले देर हो जाए। फजल वदूद को कॉल कर लीजिए 647-286-4285।
अस्सलाम वालेकुम, मैं शबाहत अली फ्रॉम मेगा मनी एक्सचेंज। हम तकरीबन 18 साल से मनी ट्रांसफर का काम कर रहे हैं। अगर आपको पाकिस्तान पैसे भेजने हैं या मंगवाने हैं तो हमसे रابطہ कायम करें। हमारा फ़ोन नंबर है 905-279-4754 और हमारा एड्रेस है 4196 कॉथरा रोड मिसिसागा।
हेयरमैक्स अल्टीमेट हेयरिंग सॉल्यूशन। Hairmax offers the world's smallest digital hearing aid at guaranteed lowest price. 3 years all-in-one worry-free service plan included with every hearing aid purchase. Do not wait. Call right now and book your free no-obligation hearing test. We have two convenient locations to serve you.
Jane Eglinton ya phir Dandas Arundel ke intersection par 416-792-8792 Hair Max 416-792-8792.
जी साहब कराम वेलकम बैक अगेन एंड 4:05:25 हमारी घड़ी में हो चुके हैं. जैसे मैंने आपसे वादा किया था साहब के पाकिस्तान के वेरी रिनाउंड जर्नलिस्ट जनाब कावर नईम हाशमी साहब से हम टेलीफोन के रबते से पाकिस्तान से पाकिस्तान की खबरें का पाकिस्तान पे जो भी खबरें हैं उनके तबसरा ये हम जनाब कावर नईम हाशमी से लेंगे और इसके बाद फिर टाइम हुआ तो फिर हम आपसे कहेंगे कि भाई आप भी अब कॉल कर लें अपनी सवालात के लिए तो आप भी सवालात कर सकते हैं. मैं ले चलता हूं आपको पाकिस्तान से जनाब नई कावर दईम हाशमी साहब. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू सर, कैसे हैं आप?
जी वालेकुम सलाम, मैं आप सबको जिम्मेदारी करते हैं आपकी, आपको भी और कैनेडा में सुनने वाले तमाम लोगों को भी
बहुत बहुत मुबारक हो सर, आपको भी और इसके साथ साथ यौम आज़ादी की मुबारकबाद सर.
हाँ आपको भी बहुत यौम आज़ादी की मुबारकबाद. हमें तो आप यौम आज़ादी की मुबारकबाद के साथ साथ यौम आज़ादी कश्मीर भी हमने मनाया है यौम आज़ादी के साथ.
जी
हमने हमारा जो पाकिस्तान में यौम आज़ादी था ये हमने इस बार जो है मकबूजा कश्मीर के आवाम से मंसूब किया हुआ था और हमारा यौम आज़ादी बुनियादी तौर पर आज़ादी कश्मीर के हवाले से.
ठीक.
और हमने अपने पाकिस्तान के परचम पे ये पाकिस्तान में पहली दफा हुआ है 72 साल में कि हमारे कौमी परचमों के साथ कश्मीर का झंडा भी लहराया गया.
अच्छी बात जी. तो मगर वो तो 14 अगस्त को हुआ, 15 अगस्त को क्या हुआ सर?
15 अगस्त को तो भाई भारत में आजादी था जो हमने यौम सियाह के तौर पे मनाया है और कराची से खैबर तक इंडिया ने जो मकबूजा कश्मीर के एक्ट में तरमीम करके उसे जबरी तौर पे अपनी इकाई में शामिल किया है उसके खिलाफ एहतजाज किया है और ये बहुत बड़ा एहतजाज था और ये पाकिस्तान की तारीख में हमने 72 साल तक कश्मीरियों के साथ जबरदस्ती का गुजारा किया. लेकिन इस दफा जबकि कश्मीरी जो है वो मुश्किल का शिकार है तो हमारे पाकिस्तान की तरफ से कश्मीरियों के साथ जिस सतह पर यकजहती का नजारा किया गया है वो बहुत ज्यादा था और वो देखने वाला था.
सही. और
जी
फरमाइए और क्या न्यूज है वहां पर?
न्यूज बहुत है जनाब, बहुत न्यूज बहुत है, न्यूज बहुत है मेरी जान. तो आज तो न्यूज तो ये भी है कि अपना कि आज नरेंद्र मोदी ने अपने यौम आजादी कर बड़ी हट गर्मी का मुजहरा करते हुए बहुत शर्मनाक बयान दिया है और यौम आजादी को उन्होंने जो खिताब किया है तो उन्होंने कहा कि वो जो कहते हैं कि हम दुनिया में सबसे बड़ा सेक्युलर वाला मुल्क है और दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का दावा करते हैं तो आज नरेंद्र मोदी क्या उससे उसका तस्वीर तो सब काना जो चेहरा है वो खुलकर सामने दुनिया के सामने आया है. उनका कहना है कि खसूसी हैसियत जो है उसको जो आर्टिकल 370 का खात्मा है उसका दफा किया नरेंद्र मोदी ने और कहा है कि मैंने वो काम कर दिखाया है क्योंकि भारत में पिछली 7 दहाइयों जो कई भारतीय को आपको पता है कि 5 अगस्त से पहले मकबूजा कश्मीर में 5 लाख भारतीय फौजी मौजूद थे और बात फौजियों की तादाद जो है वो बहुत ज्यादा कर दी गई है और नई फौज ताजा कम दस्तर जो है मकबूजा कश्मीर में शामिल दाखिल किए गए हैं. तो इस तरह मोदी साहब का कह रहे हैं कि भारत में नई सोच जो दरकार थी वो नई सोच आ गई है और उस सोच का जो सालस जो मालिक वो मैं हूँ। और मैंने मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा बनाकर कुछ बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। बात जो हम पहले भी कर रहे थे
जी,
अगर की पाकिस्तान और पाकिस्तान की अक्सरी क्यादत जो है, पाकिस्तान की हुकूमत जो है, उनका फैसला है कि भारत के साथ कश्मीर के इशू पर जंग ना की जाए, जंग से बचा जाए।
सही।
लेकिन मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि जो हालात पैदा हो रहे हैं वो किसी न किसी मौके पर जंग की तरफ जाएंगे और जंग मुझे नागजीर नजर आती है और जंग से बचना जो है बहुत नागजीर मुझे नजर आ रहा है। क्योंकि भारत जो आजाद कश्मीर पर ना सिर्फ हमले का ऐलान कर चुका है बल्कि वो मुसलसल जो है वो कंट्रोल लाइन की खिलाफ वर्जियां कर रहे हैं। आज भी उसने खिलाफ वर्जियां की है और आज भी पाकिस्तान में उसने जो खिलाफ वर्जी की है, फायरिंग की है कंट्रोल लाइन पे, इससे 3 पाकिस्तानी फौजी जो है वो शहीद हुए हैं और आबादियों पर उसका हमला हुआ है। पाकिस्तानी फौज ने बेशक उसका जवाब दिया है, उसमें कोई शुबा नहीं है कि जवाब दिया, और 5 भारतीय फौजी भी मारे गए हैं, अफसर भी हलाक हुए हैं और भारतीय चौकियों को भी नुकसान पहुंचा है। लेकिन मैं समझता हूं कि आजाद कश्मीर पर जो हमले का एक मंसूबा है, जो प्लान है भारत का और इसका नरेंद्र मोदी का, वो मेरे ख्याल में शायद पाकिस्तान और भारत को जंग से ना बचा सके और ये जंग जो है मुझे नागजीर नजर आ रही है इस वक्त।
मगर दुनिया तो खामोश है,
है जी?
दुनिया तो खामोश है,
दुनिया खामोश है, इसमें कोई शुबा नहीं है, दुनिया खामोश है। और दुनिया ने सिर्फ, हमने पहले भी बात की थी कि चीन ने सिर्फ रद्द अमल का मुजाहरा किया है।
नहीं, मैं आपका कहने का मकसद है कि यहाँ पर जंग होगी तो क्या ये जंग के बाद, जंग के बाद लोगों की आंखें खुलेंगी या दुनिया की आंखें खुलेंगी या क्या होगा?
दुनिया देश जैसे एक मुर्दा कौम कहते हैं, हम अपने आप को कहते हैं बाज दफा बाज मौके पे कहते हैं हम मुर्दा हो चुके हैं, मुर्दा कौम बन चुके हैं, हमारी हिस्से तबाह हो चुकी है। तो मकबूजा कश्मीर में जो कुछ हुआ है इससे एक गैर मौसर रद्द अमल सामने आया है, उससे मुझे ये महसूस हो रहा है जैसे पूरी दुनिया की जो है वो बेहसी में तब्दील हो चुकी है।
खावदी माशवी साहब, जंग 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 और जंग, जंग से ना ही इंडिया आज़ाद कश्मीर को अपने पास ले सकता है, ना ही पाकिस्तान मकबूजा कश्मीर को अपने साथ ले सकता है, तो फिर जंग का फायदा क्या होगा?
देखिए, आज एक मकबूजा कश्मीर के आज एक टेलीविजन पे मैंने देखा है, वो कह रहे थे कि मकबूजा कश्मीर के वो पाकिस्तान से नाखुश है, वो समझते हैं कि पाकिस्तान को जो हिंदुस्तान ने हमारे साथ किया है, पाकिस्तान को जो रद्द अमल जाहिर करना चाहिए था वो उसका रद्द अमल जाहिर नहीं किया। तो मकबूजा कश्मीर के अवाम भी जो है उनका ख्याल है कि शायद हम उनको भारत की जो मसूरियत है उससे बचाने के लिए कोई इंडिया पे हमला कर देंगे, मकबूजा कश्मीर पे हमला कर देंगे। तो ये दो एथनिक ताकतों के दरमियान अगर ऐसे सूची जाए तो मेरे ख्याल में डेफिनेटली ये खतरनाक अमर है और इसमें पाकिस्तान की जो हुकूमत है और पाकिस्तान की जो फौज है इसका जो मौकफ है तो मेरे ख्याल में दुरुस्त लगता है मुझे कि जंग मसले का हाल नहीं है। क्योंकि अगर एटमी ताकतों के दरमियान जंग शुरू होती है तो ये जंग जो है माजिद भाई ये पूरी दुनिया को अपनी लपेट में ले सकती है।
सही सही। और मगर ये कि आप अगर पाकिस्तान के टेलीविजन पे किसी ने दिखाया कि मकबूजा कश्मीर के आवाम जो है, क्या कहा आपने, नाखुश है पाकिस्तान से?
वो नाखुश है कि पाकिस्तान में वो रद्दअमल नहीं दिखाया जिससे
ये चीज इतनी मुझे आर्टिफिशियल लगती है, क्योंकि मकबूजा कश्मीर में तो अभी नहीं, मगर मकबूजा कश्मीर में ना ही कोई टेलीफोन है, ना ही कोई टेलीविजन है, ना ही कोई रेडियो है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी है, ना ही कुछ है, लोग नज़रबंद हैं अपने घरों में, तो ये बात पाकिस्तान टेलीविजन को कैसे मिल गई?
मजिद भाई, 24 घंटे पहले कश्मीर से कर्फ्यू भी उठाया जा चुका है और कश्मीर से पाबंदियां भी जो है ना वो उठाई जा चुकी है।
अच्छा, तो अब वहां पर कश्मीर के लोग आजाद हैं?
कश्मीर के लोगों को घरों से बाहर निकलने की आजादी मिल गई है। कश्मीर में ये 24 घंटे पहले हुआ।
अच्छी बात, चले फिर सही है फिर साहब। तो मगर कोई अल्लाह का शुक्र है कोई हंगामे वगैरह तो नहीं हुए ना?
जी, हंगामे जो है वो हमें पाकिस्तान का जो टेलीविजन है या पाकिस्तान का मीडिया है वो तो हमें बता रहा है कि वहाँ पे कुछ लोगों ने हंगामे किए हैं, बाहर निकले हैं, लेकिन इसकी हमें कोई ठोस शवाहद हमारे पास मौजूद नहीं है सिवाय पाकिस्तानी मीडिया की।
अच्छा, और क्या न्यूज है साहब? जी फरमाइए।
आप सवाल करते हैं, मेरा ख्याल है ये बहुत बड़ा मौजू है जिस पर हम बात कर रहे हैं।
जी
कि हमने पाकिस्तान के यौम आजादी पे बात की है, हमने बात की है हिंदुस्तान के यौम आजादी पे बात की है, तो ये भी बात की है कि LOC पे फायरिंग हुई है, और ये भी बात की है कि पाकिस्तान ने उसका जवाब भी दिया है।
अच्छा, ये इमरान खान साहब का क्या है बयान?
इमरान खान साहब जो है वो जज्बाती बयान दे रहे हैं, उनको ख्याल है कि देखिए जो असल बात यह है कि जो माजी भाई आप पूछने जा रहे हैं वो इमरान खान का जवाब नहीं है, वो जवाब ये है कि मैं वाकई तौर से समझता हूँ कि मकबूजा कश्मीर के जो आवाम है वो अपनी जंग इंश पड़ेंगे। कश्मीर के जो लोग हैं
जी,
उन्हें आजादी की जंग लड़ने का सलीका आ चुका है, उन्हें अपने बच्चों को कुर्बान करने का तरीका आ चुका है, उन्हें खून बहाने का जो तरीका होता है सलीका होता है वो उनकी रगों में बस चुका है, और आजादी का जो तसव्वुर है जो मकबूजा कश्मीर के आवाम में इतना मजबूत हो चुका है कि मैं नहीं समझता कि मुजामत नहीं होगी। डेफिनेटली वहां पर मुजामत होगी, तो मकबूजा कश्मीर के आवाम करेंगे, और ये अमरीका से लेके पाकिस्तान तक कोई उनकी मदद करे या ना करे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि वो आसानी के साथ भारतीय एक्ट को कबूल कर ले। मैं नहीं व्यक्ति तौर पर समझता ऐसे होगा।
आज लंदन इंग्लैंड में जो है वहां पर बहुत बड़ा मुजाहरा हुआ है,
ये पाकिस्तान में बहुत बहुत बड़े मुजाहरे हुए हैं, ये भी मैं आपको बताना भूल गया, कराची से खैबर तक मैं आपको बता रहा था कि बहुत बड़े बड़े मुजाहरे हुए हैं, और जो गवर्नमेंट जो मुजाहरों का एक ऐलान किया था उसमें भी बहुत ज्यादा लोगों ने रद्दअमल दिया है। मुझे तो 2 दिन में 14 अगस्त को और 15 अगस्त को जितनी पाकिस्तान में एक्टिविटी हुई है, हमने पहले थोड़ी सी माजूशी का इजहार किया था, लेकिन मुझे ये लग रहा है कि अगर कोई सूरत हाल मजीद खराब होती है तो पाकिस्तान के अवाम जो है वो मकबूजा कश्मीर के रास्ते जो है पाकिस्तान में दाखिल हो सकते हैं, पाकिस्तान की फौज दाखिल हो या ना हो, पाकिस्तान के अवाम जो है वो मकबूजा कश्मीर के अवाम की महकूमी जो है उसको खत्म करने के लिए अपनी जानों की कुर्बानी के लिए तैयार मुझे नजर आ रहे हैं।
ओहो, ओके,
मुझे तो बहुत जज्बा नजर आया पाकिस्तान के अवाम में مجھے ایسا لگا کہ پاکستان کے عوام مجھے پہلی دفعہ پریکٹیکلی پتا لگا پریکٹیکلی پتا چلا کہ پاکستان کے عوام جو ہے وہ واقعی کشمیر کو وہ جو اپنی شہرت تصور کرتے ہیں اور کشمیر جو ہے وہ اپنا حصہ تصور کرتے ہیں اور کشمیر کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہے پاکستان کے عوام.
قاضی معاشمی صاحب تھوڑے ساتھ ہمارے پاس اور بھی سوالات ہیں مگر میرے ساتھ کالرز بھی ہیں, کچھ کالرز کو بھی لے لیتے ساتھ اپنے. جی ہلو, السلام علیکم.
جی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں سر؟
جی حسن بات کر رہا ہوں. خبر صاحب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے آپ کو سر. 14 اگست بہت بہت مبارک ہو پاکستان
میں. جی حسن بھائی.
خبر صاحب میرا بڑا شارٹ سا سوال ہے. آج مریم کیپٹن
سر آپ کی آواز کٹ رہی ہے. حسن بھائی آپ کی آواز کٹ رہی ہے. جی
تو اسی دوران میں اور خبریں ساتھ شامل کرتے ہیں کی آواز
کرتے ہیں. جی ہلو حسن بھائی آپ میرے ساتھ لائن پر ہیں؟
جی جی میں لائن پہ ہوں.
آپ کی آواز کٹ رہی ہے سر. جی فرمائیے.
جی میں یہ کہہ رہا ہوں آج کیپٹن صفدر جو ہیں مریم صفدر کا جو ہسبینڈ ہے وہ گیا کشمیر میں, وہاں پہ جا کر وہ فوٹو لہراتا رہا ہے مریم صفدر کی اور ساتھ میں نواز شریف کی, وہ وہاں پہ کیا میسج دینے گئے ہیں؟ وہاں پہ کیا وہ 14 اگست ان کو زہار یکتی کرنے گئے تھے یا وہاں پہ کوئی ووٹ لینے گئے تھے, اپنا ووٹ بینک میں اضافہ کرنے گئے تھے؟ اس کے بارے میں بتائیے, کیا ان کو یہ مناسب ہے تھا یہ جو جا کر انہوں نے وہاں پہ فوٹو لہرائی ہیں؟ شکریہ سر اس کے بارے میں.
بہت شکریہ آپ کا. جی سر
بس یہ بڑی ذاتی کی ہے مریم نواز کا جو خاوند محترم ہے وہ, ایک آپ کو پتا ان کے خاندانی پس منظر کا بھی پتا ہے آپ کو, ان کی ساری چیزوں کا پتا ہے. تو میرے خیال میں ایک خاوند کو اپنی بیوی کو ہیروئن بنانے کے چکر سے باز رہنا چاہیے. مریم نواز نے اپنے باپ کے لیے, اپنے باپ کی آزادی کے لیے, اپنے باپ کی رہائی کے لیے, اپنے باپ کے جرائم جو ہے مبینہ جرائم ہم نہیں کہتے, ان پہ قرضہ ڈالنے کے لیے جتنے اقدامات کیے ہیں وہ میرا خیال ہے بہت کم بیٹیاں کرتی ہیں. اور مریم کا باپ جو ہے گناہ گار ہے یا نہیں گناہ گار ہے وہ ایک الگ بات ہے, لیکن مریم نواز نے اپنے باپ کے سامنے یہ ضرور ثابت کیا دنیا میں کہ وہ ایک اچھی اور باپ سے محبت کرنے والی بیٹی ہے. لیکن مریم نواز کو معذوری دکشت بنا کے پیش کرنا جو ہے وہ اچھی بات نہیں.
نیکسٹ کال لیتی ہیں. ہیلو السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
کون بات کر رہے ہیں سر؟
سر میں محمد اشرف بول رہا ہوں. آپ کو 14 اگست مبارک ہو. خان نسمی صاحب بس السلام علیکم, آپ کو 14 اگست مبارک ہو اور پورے پاکستان کو. سر میں یہ چھوٹا سوال ہے کہ اس میں میں سب سے پہلے میں پھر دوسرے لوگ, یہ لوگ فون کرتے ہیں, یہ لیڈروں کو لیڈروں سے ہی محبت کرتے ہیں, یہ اپنے ملک سے اپنے وطن سے محبت کیوں نہیں کرتے؟ اگر اتنی محبت اپنے وطن سے کریں اور لیڈروں سے نہ کریں تو انشاءاللہ پاکستان کہاں سے کہاں پہنچ جائے.
بہت شکریہ سر.
ہاں یار بڑا اچھا سوال کیا آپ نے, اور ہم اسی آپ کے سوال پہ نا اس پروگرام میں کئی دفعہ بات کر چکے ہیں کہ یہ پاکستان کی ہندوستان میں بھی ایسا ہے اور جو ہمارے جیسے چھوٹے ملکوں میں بھی ایسا ہے کہ ہم اپنے ملکوں سے اپنے وطن سے اپنے وطن کے عوام سے محبت نہیں کرتے, ہم اپنی پارٹیوں سے اور اپنی جو سیاسی وابستگیاں ہیں ان سے آپ پیار کرتے ہیں.
شخصیت پرستی.
نواز شریف بے نظیر میری ہے, عمران خان میرا ہے, اور ان کے جو لیڈران ہیں جب وہ غلطیاں کرتے ہیں غلطی در غلطی کرتے ہیں تو اس پر پردہ پوشی کی جو ہے وہ کوشش کرتے ہیں. تو اچھی قومیں جو ہے جو قومیں ترقی کرتی ہیں, جو ملک ڈیولپ ہیں, جو بنتی ہیں, جو جن کا فیوچر ہوتا ہے وہ ایسا نہیں کرتے, وہ سچ کو سچ اور جھوٹ کو جھوٹ کہتے ہیں. لیکن یہ ملک کی بدقسمتی ہے, ہم اپنے اس پروگرام کے ذریعے سننے والوں کو خاص طور پہ پاکستان سے تعلق رکھنے والے تمام لوگوں سے درخواست کریں گے کہ محبتیں اپنی جگہ, آپ کی محبتیں اپنی جگہ, لیکن وطن کی محبت سے بڑی محبت کوئی نہیں ہوتی.
بہت خوب.
آپ کے وطن کا مفاد جو ہے جہاں وہ ٹکراتا ہے तो आपको खड़े हो जाना चाहिए, चाहे आपका माँ हो, आपकी बीवी हो, आपकी महबूबा हो, आपके बच्चे हो, आपके दोस्त हो, यार सब करना चाहिए वचन की मोहब्बत को अवलियत देनी चाहिए। मैं आपके सवाल पर मैं खुश हूँ और मैं इसका जवाब भी आपको तो सीख सकती है।
नेक्स्ट कॉल जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
जी अस्सलाम वालेकुम,
कौन बात कर रहे हैं सर?
जी मेरा नाम लतीफ चौधरी है। और सर आप कैसे हैं? खैरियत
अल्हम्दुलिल्लाह सर, फरमाइए।
जी आपको और हाशमी साहब को दोनों सर पाकिस्तान 14 अगस्त की ईद मुबारक हो आप दोनों को।
बहुत शुक्रिया सर।
तो हाशमी साहब से मेरा एक सवाल था कि हम देखें कंट्री है, जब भी सऊदी अरब की कोई प्रॉब्लम आती है हम फौरन साथ देते हैं, तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ हाशमी साहब से, अभी देखें ये मसला कश्मीर का है, ये प्रॉब्लम पाकिस्तान के साथ, किसी भी सऊदी अरब या किसी भी हमारे और जो इस्लामी ममालिक है वहाँ सवाए तुर्की को छोड़ के, तुर्की को किसी भी मुल्क ने हमारा साथ देने की कोशिश की है? कोई भी पाकिस्तान के साथ कहता है कि जितने भी इस्लामी ममालिक है, नहीं पाकिस्तान को अब हमारी हमायत की जरूरत है, हम इसका साथ दें ताकि ये अपने आप को अकेला फील ना करे, तो ये हमारी जो नेबर कंट्री है इस्लामी कंट्री है, ये कैसे हम
जी जी आपको कावर नईम हाशमी साहब का आवाज आ रही है? आपको कावर नईम हाशमी साहब का आवाज आ रही है?
हेलो
जी, हेलो, मुझे आपकी आवाज आ रही है? कावर नईम हाशमी साहब को आवाज आ रही है?
हेलो,
अच्छी बात। सामिन कराम, मैं अभी दो कमर्शियल्स लेता हूँ, उसके फौरी बाद मैं जनाब कावर नईम हाशमी से आपकी बातचीत करवाऊंगा। मैं दोबारा लाइन मिलाने की कोशिश करता हूं, मैं उनसे माई लाइन मनखता हो गई है। दो कमर्शियल्स के फौरी बाद वापस आएंगे।
इम्प्रेसिव क्वालिटी ऑफ फूड एंड टॉप नॉच सर्विस, बेस्ट अलीम इन टोरंटो, लजीज बिरयानी। ये है मिसेस सागर के मास्टर बिरयानी एंड ग्रिल। इनके मेन्यू में है शामिल बिरयानी, हलीम, पाए, निहारी, चिकन टिक्का, कबाब एंड फ्रेश नान्स। ऑल्सो स्पेशल हलवा पूरी सर्व्ड ऑन सैटरडेज, ऑल रीजनेबली प्राइस्ड एट 2580 शेपर्ड एवेन्यू मिसेस सागर, न्यू एंड सेंटर। कॉल एट 905-276-0666, 905-276-0666।
मुझे फैमिली स्पॉन्सर करना, कैसे अच्छे से इमिग्रेशन कंपनी का नंबर बोलो जे।
ICC इमिग्रेशन MD या RD नु मिलो तो अनु सही सलाह दे के तो अड़ा केस बहुत जल्दी फाइल कर देंगे।
MD या RD? ओ ICC।
ICC नहीं ICC।
ओके, एड्रेस बोलो।
1137 डेली रोड ईस्ट मिसिसागा, टेलीफोन 905-400-8-24-24।
ओ ICC।
फिर ICC? ICC बोलो।
ICC इमिग्रेशन 905-461-2424।
हाँ, एद्दा वर्दी गल।
आयो।
मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे की शादी का वेन्यू बहुत ही यूनिक हो।
तो फिर तो हमें सिर्फ कैलेडन कंट्री क्लब को ही चूज करना चाहिए।
कैलेडन कंट्री क्लब, आपकी ब्रेथ टेकिंग सेरेमनीज के लिए, जहां पर आप वॉकआउट टेरेस के साथ खूबसूरत रिवर रूम 250 गेस्ट के लिए बुक करवा सकते हैं और हमारे गोल्फ कोर्स और क्रेडिट रिवर की सीनिक ब्यूटी का भी लुत्फ ले सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट टाइम एवर ऑन्टारियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं बैंक्वेट हॉल मेड ऑफ ग्लास, ब्यूटीफुल स्टेट ऑफ द आर्ट, जिसमें तकरीबन 600 गेस्ट की कैपेसिटी है। शादी ब्याह की तकरीब हो या फिर मेहंदी अकीका, हर तरह की पार्टीज के लिए कैलेडन कंट्री क्लब इज द परफेक्ट फॉर योर ड्रीम इवेंट्स। कॉल 416-887-4564, 2121 ओल्ड बेसलाइन रोड, कैलेडन। कैलेडन कंट्री क्लब।
जी साहब इकराम, वेलकम बैक अगेन। एंड हमारी दोबारा से लाइन जुड़ गई जनाब कावर नईम हाशमी साहब से। और कावर साहब, वो एक भाई साहब का जो फ़ोन आया था, उन्होंने कहा कि सऊदी अरब या किसी ममालिक ने टर्की के अलावा हमारा साथ नहीं दिया। जी फरमाइए।
देखिए जी, बाकी मुल्कों की बात तो छोड़े हैं, हमें सऊदी अरब की बात करेंगे, जिन्होंने पिछले कुछ 72 घंटे पहले $75 बिलियन का मुआवजा किया है इंडिया के साथ।
जी,
$75 बिलियन और ये एग्रीमेंट किया गया है आरामको के साथ। तो आरामको जो है वो दूसरे बहुत सारे काम करने के अलावा असला साजी का काम भी करती है।
सही,
ये जो ये है, तो अगर सऊदी अरब जो है मौजूदा नाव हाल में इंडिया के साथ दुनिया का सबसे बड़ा वायदा करता है,
तो भाई इसके बाद आप सोच लें कि पाकिस्तान कहाँ खड़ा हुआ।
भाई हमें तो कावद नईम आशमी साहब मैं तो हमेशा ये स्टैंड लिया है कि पाकिस्तान को कभी भी किसी और के साथ किसी और पे ये कि भाई मैं वो भरोसा करके काम नहीं करना चाहिए जो अकेले हैं।
भाई लेकिन आपके प्रोग्राम में हर दफा नए लोग भी आते हैं,
हाँ,
तो उनको भी अपना ये नजरिया बताए कि पाकिस्तान का खड़ा हुआ है और मकबूजा कश्मीर के अवाम का खड़े हुए
हैं। हाँ ठीक है, ठीक है सर, मगर
सऊदी अरब को तो हम अपने सरदार मानते,
अब नहीं है सर, अब नहीं है। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, अब नहीं है,
हमारा वो आपका नहीं है, लेकिन आम आदमियों को तो नहीं पता ना इन चीजों का।
सही,
आम आदमी तो ये समझते है कि जो हमारी इजाज़त मुकद्दस है, जहाँ हम हज की अदायगी के लिए जाते हैं, जहाँ हमारी मुसलमानों की सबसे बड़ी इबादत गाहें मौजूद है, जो हमारी जिस शहर को जिस मुल्क को दुनिया भर के ममालिक जो है वो अपनी निजात का जरिया समझते हैं, वो मुल्क जो है वो खुद कहाँ खड़ा हुआ है।
सही,
वो साम्राज्य का सबसे बड़ा एजेंट है।
सही, सही कहा,
नए साम्राज्य का साम्राज्य का अगर कोई दूसरा नाम है तो वो सऊदी अरब है।
सही कहा आपने, आई एग्री विद यू सर,
ठीक है ना,
एकदम सही कह रहे
हैं। तो मेरे दोस्तों को कह रहे हैं कि किसी गलतफहमी में नहीं है, जहाँ साम्राज्य जीत रहा है और पाकिस्तान समेत दुनिया के जो मुसलमान ममालिक है इनकी पॉलिसियां इनको ले डूबी है, और ये शायद आखिरी जमा है, ये शायद आखिरी मुक्त है, तो इनको कोई असर होता है, ये कहते हैं तुम सका इजलास बुलवाएंगे।
अगली कॉल की तरफ चलते हैं। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम सलाम जी माजिद भाई, कैसे हैं, खैरियत?
अल्हम्दुलिल्लाह, कौन बात कर रहे हैं सर?
और माजिद भाई, ये जो तो पिछले 30 साल से ये कोई भी इस्लामी मुल्क, अभी तो चलो ठीक है, अब वाजे हो गया, सामने आ गया, पहले भी कई दफा ऐसा हो चुका है, किसी इस्लामी मुल्क ने खुल के हमारी मदद नहीं की दुनिया में कहीं भी किसी भी फॉर्म पे। अब बाकी पिछले महीने हमारे इमरान खान साहब वजीर आजम हमारे अमेरिका से वापस आए थे, तो ऐसे लग रहा था जैसे पता नहीं वो दुनिया फतह कर रहे हैं, अल्लाह की जात पे हमें भरोसा करना चाहिए, लेकिन उनके सब जितने भी जब भी अमेरिका के दौरे से हमारे वजीर साहब वापस आते हैं, ये नहीं, यही पिछले भी वो नारे मारते आते, लो ये अमेरिका ने हमें धमकी दे दिया, हमने पूरी दुनिया जीत ली है, लेकिन अल्लाह की जात पे हम भरोसा नहीं करते। अमेरिका ने देखे जैसे ही वापस आए हैं इंडिया ने अनाउंस कर दिया, तो इसका मतलब वो तो सारा काम उल्टा हो गया जो अमेरिका से जीत वर्ल्ड कप जीत गए थे। हाशिम साहब बोले थे तो सर,
बहुत शुक्रिया जी। हाशिम साहब कुछ कहना चाहेंगे इसके बारे में?
कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की बहुत बड़ी गलती थी, या पाकिस्तान की बात आती, पाकिस्तान में जो सबसे पहला इन्विटेशन लेटर आया था वो रशिया की तरफ से आया था ना, हमने रशिया का दौरा मनसूख करके वाशिंगटन की तरफ रुख कर लिया था।
अगली कॉल की तरफ चलते हैं जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी वाले सलाम, कौन बात करे सर?
सर बाल नाम है मेरा।
जी फरमाइए
सर। मेरा कहना ये है कि एक तो ये कश्मीर के मौजू के ऊपर ये बिल्कुल चुपचाप से खामोश, इनको कुछ पता ही नहीं था, ठीक है ना। अब वो अभी में कहते हैं, अब ये जो कुछ हो रहा है उसको फिक्कियां जो है ना ये फेंक रहे हैं, इससे क्या नतीजा निकलेगा? कुछ निकलेगा? और दूसरी बात यह कि आपने कहा कि अभी सऊदी अरब हमारा वो लीडर नहीं रहा, बात यह कि हमारे एटॉमिक जो प्रोग्राम के लिए और F-17 की जो फंडिंग क्या बांग्लादेश ने की थी वो सारी सऊदियों की है।
नहीं सर, I don't believe that.
बिलीव वाली क्या बात है, ये सारे पैसा उन्होंने दिया हुआ है सर।
नहीं सर, नहीं मेरे पास, अच्छा मेरे पास, मैं ये नहीं कह सकता, आपकी बात हो सकता सही हो, मगर मेरे पास इस चीज़ की कोई रिपोर्ट नहीं है कि सऊदी ने सारा पैसा दिया कि हम करेंगे।
ख्याल में पाकिस्तान के पास इतना वसाइल थे कि वो कर लेता।
ठीक है सर, कहाँ से वसायल आए मुझे मालूम नहीं है, मगर ये कहना कि सऊदी अरब ने दिया, आई डाउट इट वेरी मच। कावद नईम आशमी साहब क्या कहेंगे?
ये जो सारी फंडिंग थी
ये पाकिस्तान की अपनी फंडिंग थी, आज तक कोई बंदा साबित नहीं कर सका कि फंडिंग जो है वो गैर मुल्की ज़रा से हुई हो, क्योंकि इस काम के लिए फंडिंग की जरूरत नहीं थी, हुनर की जरूरत थी और पाकिस्तान के पास हुनर था। पाकिस्तान ने एक लेबोरेटरी बनाई थी और उसके बाद हम जो है वो एक एटमी ताकत बने दुनिया की। और मेरा नहीं ख्याल कि हमने ये जरूर किया कि हमने इस्लामी ममालिक की मदद की, इस्लामी ममालिक को न्यूक्लियर पावर जो है वो शेयर की और उसका उसके बदले के जो सलूक किया, फिर डॉक्टर कबीर खान को जो टेलीविजन पे सरकारी टेलीविजन पे आके माफी मांगना पड़ी थी, वो चीजें सारी सामने हैं। तो नहीं कहा जा सकता कि जी भुट्टो साहब ने जो एटमी बम का तसव्वुर था जो उसका को अमली जमा कराने के लिए दूसरे मुल्कों से मदद ली थी। हम पाकिस्तान उस वक्त जो है मुआशी तौर पर इतना भी गिरा हुआ नहीं था, वो कोई बहुत बड़े ये सरमाकारी नहीं थी कि हमने कोई नया मुल्क बनाना था, एक हमने बम बनाना था वो हमने बना लिया था।
बहुत शुक्रिया सर जी। हेलो अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। जन्नतुल मकाम दोज़खुल हराम।
जी
माजिद भाई, मैं सीमा बात कर रही हूँ।
जी सीमा,
आपकी लाइन आजकल मिलना इतना मुश्किल हो गया है ना, लगता है चांद पे जाना ज्यादा आसान होगा।
नहीं, आप जमीन पे ही रहे ज्यादा बेहतर है। और हमारी लाइन, माजरा चाहता हूँ मैं, मगर ये अभी भी देखे सारी की सारी 8 लाइनें हमारी बिजी हैं अभी।
तो जल्दी से बात कर लूँ मैं।
जल्दी से बात कर ले आप।
ओके, पहली बात तो ये कि हाशमी साहब ने कहा कि इमरान खान ने जज्बात में आके बात करी है। इमरान खान ने कभी जज्बात में आके बात नहीं करी, उनकी बात सॉलिड और बहुत प्रैक्टिकल होती है। और दूसरी बात, एक मासूमाना सवाल करना चाहूंगी हाशमी साहब से, कर लूँ?
जी जी, बाय ऑल मींस।
ओके हाशमी साहब, जब इमरान खान की तारीफ की बात आती है तो आपको इतनी मुश्किल क्यों होती है उनकी तारीफ करने में, प्लीज मुझे बताएं।
बहुत शुक्रिया आपका। हाशमी साहब, आपको क्यों तकलीफ होती है इमरान खान साहब की तारीफ करने में, क्यों तकलीफ होती है सर आपको?
आप इमरान खान के जो खातून सीमा बता दें,
सीमा
जी सुन रही है या नहीं सुन रही?
हाँ सुन रही हूँ, आप बताएं।
सीमा जी, इमरान खान आपके सियासी दोस्त हैं, लेकिन इमरान खान का जो मेरा ताल्लुक है वो सियासी नहीं है, वो इंतहाई जाती एक ताल्लुक है। इमरान खान मेरे सगे भाई की तरह है और इमरान खान का मैं बहुत एहतराम करता हूँ और मैंने जिंदगी में पहली बार अगर किसी दूसरी पार्टी को वोट दिया था तो वो इमरान खान था और मैं आज भी इमरान खान से तवक्कुआत बांधे हुए हूँ। लेकिन इमरान खान जो है वो पाकिस्तान में फैसला साजी में एक आजाद शख्स नहीं है, वो एस्टेब्लिशमेंट का एक आलाकार है। एक अगर आपको मेरी जवाब से, मेरी बात से कोई तकलीफ पहुंची है तो मैं उसके लिए पेश माजरा चाहता हूँ।
इस बात पे तो मैं भी आपसे डिसएग्री करूंगा, मगर ये बात टॉपिक कहीं और चला जाएगा। मगर चलिए आप दूसरी लाइन लेते हैं। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो
या हाय।
हाय
या अस्सलाम वालेकुम।
वालेकुम अस्सलाम।
या सो जस्ट दिस द इश्यूज गोइंग अबाउट द कश्मीर ह्यूमैनिटी and so I'm listening this radio station, but the thing is why everyone pulling leg for the previous Pakistani government. It's the new government is 1 year is over, they did not did anything for the people. They have to do now, he had to do something for the Kashmir, and now his turn, Imran Khan turn. He's nothing doing anything for the people. Everything is so expensive. And he's just about to talk about to the previous government, which is not nice. Now it's 1 year over. He always talk about, when I play cricket, I win the World Cup. He did not win the cup. Other people win the cup. Other people did the struggle and played a good game. And in the Pakistan, everyone is crying. Everything is expensive. And the Sheikh Rashid said When I come in the government, I change the railway system. He did not change the railway system. Everything is bad to bad. Everyone is crying. He increased the tax. People are crying for the rotis. So now he's trying to talk for the Saudi and America. If he's an educated person, he has the power. He has to talk for the Donald Trump and the Saudi prince. Why are you again pulling like Maryam Sharif and Nawaz Sharif? Forget to them. You already put in the jail. So now it's his turn.
Good. Thank you so much. I really appreciate it.
He has to raise the voice about the Kashmir. Why are you going to the past and history? Think about the present.
Thank you so much. I really appreciate it. Thank you for calling. कावड़ी माशमी साहब कुछ तबसरा करेंगे. ये बहन ने फोन किया है, इनको चाहती है कि भाई
मेरी बीवी ने तो इसका जवाब मेरे का ये है कि इमरान खान इज टू सिंबल ऑफ स्टेटस को. इमरान खान स्टेटस को तोड़ने में नाकाम रहे हैं. जो सबसे बड़ा सबूत है वो पाकिस्तान में चेयरमैन सेनेट के खिलाफ जो करारदाद और उस करारदाद की जो नाकामी है वो इस बात का बहुत बड़ा सिंबल है कि इमरान खान ने नवाज शरीफ में और जरदारी में एक रत्ती भर का भी कोई फर्क नहीं है. ये समझते हैं कि मैं इमरान खान के खिलाफ बात करता हूँ. उन्हें याद रखना चाहिए कि मैं ये बार बार कहता हूँ कि हमने जरदारी और नवाज शरीफ से निजात पाने के लिए इमरान खान का चुनाव किया था, लेकिन इमरान खान जो है जरदारी और नवाज शरीफ नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के नक्शे कदम पे चल रहा है और उसकी टीम में 100% लोग जो है वही लोग मौजूद है जो जरदारी और आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के साथ काम कर चुके हैं और वो तमाम के तमाम लोग मौजूद है. बात है जो नवाज शरीफ पर और आसिफ जरदारी पर लगाए जाते हैं.
अब ये मुझे इसका सवाल, इस सवाल का जवाब मैं चाह नहीं रहा था कि मैं इस रुख पे पहुंचूं, मगर आप मुझे खींच के ले आए इधर. कावड़ी माशमी साहब, इमरान खान के पास क्या चॉइस है, कहां से लेके आए वो नए ब्लड को? आप लोग बार बार ये कहते हैं कि भाई वही चेहरे आ गए. आप जी
जो आदमी कहता है कि मैंने इंतजार के लिए 22 साल तक जदोजहद की है
जी,
22 साल की जो जदोजहद है क्या वो हमारी बयानात तक मौजूद थी? 22 साल में वो कोई अपना सिस्टम नहीं बना सका. 22 साल में वो अपनी कोई नई टीम नहीं बना सका. 22 साल में वो उन लाखों बेटियों बेटों में से कोई अपने चुनाव नहीं कर सका जिनको वो टिकट देता.
मगर जब वर्ल्ड जब उस पे लेके आते हैं ना,
उसको क्यों खौफ था कि उसको क्यों खौफ था लोग आ जाएंगे? उसने पुरानी पार्टियों से बंदे लेके टिकट क्यों दिए? जब जुल्फकार अली भुट्टो का इंकलाब आया था, जब वो 1967 में वो इंकलाब लेके आया था, जब उसने 1970 का इंतखाब, लोग कहते थे कि वो खंभे को भी मोड़ देगा तो खंभा भी जीत जाएगा. तो ये तस्वर इमरान खान के अंदर पैदा क्यों नहीं हुआ? मैं समझता हूँ कि इमरान खान गरीब से गरीब आदमी को और मतवर तबके के बच्चों को टिकट देता है. तो मैं नहीं समझता कि जरदारी और नवाज शरीफ जो है उसके उम्मीदवारों के सामने जीत सकते थे. उसके हर उम्मीदवार ने जीतना था और इससे ज्यादा तादाद में जीतना था. जितने वो करप्ट लोग अपने साथ मिला के और पुराने लोगों को साथ मिला के और वो जो इलेक्टेबल लोग हैं उनको जो टिकट दिए हैं उनकी बजाय अगर वो नए बच्चों को टिकट देता तो मैं समझता हूँ कि इस मुल्क में सही मानों में इंकलाब आ सकता.
अब आप आपका जवाब मैं ये देता हूँ कि वो अजय ये इलेक्टिव जिसको कहते हैं आप, इलेक्टेबल जो कहते हैं आप उसको, वो जो है वो भी तो इनको मेजोरिटी नहीं लेके आ सके. मेजोरिटी नहीं है इमरान खान के पास, तो इमरान खान ने उन्हीं लोगों को, उनको पता था कि कौन जीतेगा कौन हारेगा. कम से कम हुकूमत में तो आए, हुकूमत में आने के बाद अभी 1 साल हुआ है, 1 साल के बाद भी चेहरे बदलेंगे, दूसरे लोग आएंगे वहां पर.
میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان نے جو سنگل میجورٹی حاصل کی ہے, عمران خان کے ہاتھ سے اگر ایم کے ایم نکل جائے, عمران خان کے ہاتھ سے اگر صرف 3 ووٹ یا 5 ووٹ نکل جائے تو عمران خان کی حکومت ختم ہو سکتی ہے.
بس پھر
عمران خان تو 5 ووٹوں کے سارے کھڑا ہوا ہے.
تو یہ کہنا, تو یہ کہنا کہ بھائی کسی کو بھی کھڑا کرتا کھمبے کو بھی, یہ کہنا صاحب
کھمبوں کو ووٹ دیتا, اگر وہ نئے بچوں کو ووٹ دیتا, اگر وہ لوئر مڈل کلاس کے لوگوں کو ووٹ دیتا, اگر وہ مڈل کلاس کے ووٹ دیتا, اگر وہ سو کارڈ ان لوگوں کو ووٹ دیتا, ان بچوں کو ٹکٹ دیتا جو اس کے دھرنے میں شریک تھے, ان بیٹیوں کو ووٹ دیتا جن بیٹیوں,
مگر آپ کے پاس, مگر آپ کے پاس کیا کیا کس طریقے سے کہہ سکتے ہیں آپ کے بھائی وہ لوگوں کو, اگر وہ کھمبے کو بھی کھڑا کرتا تو کھمبا ووٹ دیتا. انہوں نے تو ابھی جتنے الیکٹریبلز ہیں اس کے بغیر تو ان کی حکومت ہی نہیں بن سکتی.
میں سمجھتا ہوں, میں اس لیے کہتا ہوں کہ میں اس سوسائٹی کا ایک آدمی ہوں اور مجھے پتا ہے کہ لوگوں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ہم نے ووٹ دے.
ہلو,
میں 100 لوگوں کو جانتا ہوں تو 100 میں سے 99 لوگوں نے فیصلہ کیا ہوا تھا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے تو ہم نے ووٹ عمران خان کو دینا ہے.
مگر سر یہ تو ثابت تو نہیں ہوا نا, یہ ثابت تو نہیں ہوا نا, یہ
سر میں آپ کو سچے بتا رہا ہوں.
مگر یہ ثابت تو نہیں ہوا نا سر, ابھی عمران خان کے پاس کتنی سیٹیں ہیں
جو ہے وہ اب بھی آپ کو میں نے بتایا نا سنگل میجورٹی میں.
بھائی تو کتنی, کون سی اس نے کہ پوری کی پوری میجورٹی, ایکسٹرا میجورٹی لے لی. اگر دوسری پارٹیاں بھی چھوڑ دیں اس کو تو اس کی تو حکومت ڈپ ہو جائے گی. تو اگر یہ ان لوگوں کو ساتھ نہ ملاتا تو اس کو تو حکومت بننی نہیں تھی, پھر وہی آ جاتے, پھر وہ دوسری پارٹیاں جس سے آپ گیٹ ریڈ آف کرنا چاہتے ہیں.
دیکھیے ماجد بھائی, آپ اور میں دو مختلف نظریات میں بات کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر الیکٹیبل لوگوں کی بجائے وہ نئے چہروں کو ٹکٹ دیتا کو میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں زیادہ پذیرائی اثر ہوتی اور عمران خان کی سیٹیں زیادہ ہوتی.
آئی ڈونٹ بلیو اٹ. مگر چلے دوسری کالز لیتے ہیں. سب کالرز میرے سارے کے سارے, ساری لائنیں جلی ہوئی میری. جی ہلو, السلام علیکم.
السلام علیکم بھائی صاحب, میں عظمت بول رہا ہوں. میں یہ پوچھنا سی, یہ کہندے نے کہ الیکٹڈ ہو لیا, پچھلا الیکشن 2013 دا ہویا سی, اس نے کہندے سن کہ اس نوے بندے نے ٹکٹ دے کے الیکٹڈ ہو لیا, اس واسطے ہار گیا. یہ بھی نیوز اخبار کی ہے, سارے سارے میڈیا سب کرتے تھے پاکستان.
اوکے سر, بہت مہربانی آپ کی احمد بھائی. جی بات کریں صاحب. اس
جی 2013 کے انتخابات میں عمران خان کی وہ انتخابی پوزیشن نہیں تھی جو 2018 میں تھی. عمران خان وہ 2013 میں پہلی دفعہ ایک اسٹیبلش تھوڑے سے ہوئے تھے. اس وقت 2013 میں اگر میجورٹی جو تھی ووٹروں کی وہ عمران خان کے ساتھ نہیں تھی, کیونکہ لوگوں کو یقین ہی نہیں تھا کہ یہ پارٹی جیت سکتی ہے. لوگ اس کو ایک رسکی گھوڑا سمجھ کر اس پر وہ چاہتے تھے, اس پر اپنا ووٹ نہیں دینا چاہتے تھے. لیکن 2018 کے انتخابات میں انہوں نے, پاکستان کے عوام نے یہ تصور کر لیا تھا کہ یہ رسکی گھوڑا نہیں ہے, یہ جیتنے والا گھوڑا ہے اور ہم اس کے ساتھ ہیں. اور جب لوگ تھا کہ یہ رسکی گھوڑا نہیں ہے اور یہ گھوڑا جیتنے والا گھوڑا ہے, تو عمران خان کو نئے لوگوں کو ٹکٹ دینے چاہیے تھے. یہ میں نے پہلے سوال کے جواب میں بھی کہا ہے, میں نے آپ دوبارہ بھی کہا.
ایک اور کالر لیتی. جی السلام علیکم.
جی وعلیکم السلام.
کون بات کر رہے ہیں سر؟
جی میں ایوب بول رہا ہوں. جی تو بات میں نے یہ کر دی تھی کہ 2013 میں بھوٹ کا کمال نہیں تھا, 2017 میں بھوٹ نے اپنی جب دالی کی انٹری تو سیٹیں مل گئی پاکستان میں. تو وہ اس وقت تو اصل جو چیف الیکشن کمیشنر ہے وہ جی ایچ کیو سے ڈیل کرتا ہے.
آئی ڈونٹ بلیو دیٹ سر, آئی ایم ناٹ انٹو دیٹ. میں اس کا سواب, یہ میں ان باتوں میں آتے ہی نہیں ہوں سر. جی ہلو, السلام علیکم.
وعلیکم السلام. میرا بس ایک سوال یہ ہے کہ جیسے آپ نے پروگرام کے شروع میں بولا تھا کہ جنگ جو ہے وہ دونوں ممالک کے فیور میں نہیں ہے,
جی,
اور گورنمنٹ آف پاکستان بھی اب یہ انٹینشن شو کر رہی ہے کہ وہ سفارتی سطح پہ اس کو مسئلے کو حل کرنا چاہ رہی ہے, اسی لیے کل سلامتی کونسل میں جو ہے اس پہ ڈسکشن ہونی ہے. تو کیا دونوں طرف کا میڈیا ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے؟ یہ تو میڈیا آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ کل جو ہے وہ جنگ شروع ہو رہی ہے, और क्या ये जितने भी मीडिया पर्सन हैं, क्या ये लाइन ऑफ कंट्रोल पे जाके पहली सफ में खड़े होंगे क्या?
बहुत शुक्रिया,
मीडिया को जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए।
बहुत शुक्रिया आपका। कावद माशी साहब क्या कहते हैं आप?
इसमें मीडिया की कोई गैर जिम्मेदारी नहीं है। बात यह है कि जो सलामती काउंसिल का इजलास हो रहा है, ये लोगों की और हुकूमत पाकिस्तान की गलत फहमी है कि ये सलामती काउंसिल के सदर को पाकिस्तान की तरफ से लिखे गए खत के हवाले से कल इजलास बुलाया गया है। कल सलामती काउंसिल का जो इजलास हो रहा है वो एक रूटीन का इजलास है। सलामती काउंसिल के सदर ने आज वाजिया किया है कि मुमकिन है इम्कान है कि सलामती काउंसिल के इजलास में कश्मीर का मसला जेरे बहस आए। इट मींस कि कश्मीर का जो इशू है आज शुरू होने वाले जो 24 घंटे बाद शुरू होने वाला सलामती काउंसिल का इजलास है उसमें का जो एजेंडा है उसके एजेंडे में कश्मीर का इशू ही मौजूद नहीं है। ये आपको याद रखना चाहिए।
ठीक है,
सलामती काउंसिल के सदर का बयान। ये मैं नहीं कह रहा कि सलामती काउंसिल के इजलास में कश्मीर का मसला डिस्कस नहीं होगा। मैंने आपको ये बताया कि सलामती काउंसिल के सदर ने कहा मुमकिन है कि ये मसला भी इसमें जेर बहस आए। और पाकिस्तान का जो वजीर खारजा है उसका कहना था कि जी हाँ हम जाएंगे सलामती काउंसिल में तो वहां कौन से हमारे लिए फूलों के हार लेके लोग खड़े होंगे। और आज वो पाकिस्तान का वही वजीर खारजा कह रहा है कि सलामती काउंसिल का इजलास जो है ये बड़ी कामयाबी है और पाकिस्तान के कहने में बुलाया जा रहा है। ऐसा हरगिज नहीं है जी।
नेक्स्ट कॉल सर, कौन बात कर रहे हैं जी? हेलो, अस्सलाम वालेकुम।
अस्सलाम वालेकुम,
कौन बात कर रहे हैं सर?
मैं गोपाल बात कर रहा हूँ। इस वक्त हाशमी साहब हैं क्या?
जी जी फरमाइए।
बस मुझे हाशमी साहब को मुबारकबाद देनी थी, उन्होंने जो आज इतना बेहतरीन तजिया पेश किया है और बड़े जज्बाती और सही अंदाज में। सुभान अल्लाह, मेरा ख्याल है कि आपको भी कुछ ना कुछ उस पर यकीन आया होगा। बस यही कहना था मुझे। सलाम पेश करता हूँ।
वालेकुम अस्सलाम। ये कावद नहीं हाशमी साहब तो हमारे टीचर हैं सर, ये तो हमारे प्रिंसिपल हैं, तो ये तो हमें सिखाते हैं, रोजाना हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाते हैं। नेक्स्ट कॉल जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम।
जी वालेकुम अस्सलाम। मैं ये मोहतमा का सुन रही थी और हाशमी साहब का सुन रही हूँ। मुझे बहुत ज्यादा दुख सा हो रहा है कि एक साल का अर्सा हुआ वो किस कदर मुसीबतों से गुजर रहा है मुल्क, और किस कदर आप सब कुछ जानते हुए इतने हाशमी साहब मैं क्या कहूँ इमोशनल हो गए कि उस बेचारे के पीछे हर कोई पड़ा हुआ है। अल्लाह जाने कि अगर हाशमी साहब को एक दिन के लिए देना, हाशमी साहब क्या करेंगे, इन लोगों से कैसे डील करेंगे। मेरी खुद सिस्टर लाहौर में वो वोट दिए उन्होंने, उनके वो हल्के से वो जीता ही नहीं जो मतलब सारे लोग पढ़े लिखे थे। इमरान खान क्या करे कहाँ जाए, उस बेचारे की मत मार दी है लोगों ने, समेत हाशमी साहब जैसे जर्नलिस्ट जो के इन्हें सॉफ्ट कॉर्नर रखना चाहिए उसके लिए कि वो क्या कर रहा है। और कश्मीर का मसला तो अब से थोड़ी है, कश्मीर का मसला तो बहुत पुराना है। मैं खुद हिस्ट्री की स्टूडेंट हूँ, मैं कायदे आजम की पढ़ी हुई हूँ, मैं सब कुछ हम लोग डिस्कशंस करते थे। हाशमी साहब से कहे कि रेडियो पे आके प्लीज प्लीज, कभी किसी और मीडिया ने ऐसी बातें नहीं की, मैं यहाँ पे और भी जो शुरू के प्रोग्राम है उनमें एक युद्धवीर या कोई और है उनके सुनती हूँ, मुझे बहुत अफसोस होता है।
अच्छा, किसी का नाम ना ले, किसी का किसी भी हमारे कोलीग का आप नाम ना ले।
भाई मिलके हम लोग मिलके कम अज कम कुछ अपनी लाज रख ले। आपको कहेंगे जरा थोड़ा थोड़ा ठंडा पानी पिए प्लीज।
बहुत शुक्रिया आपका हाशमी साहब। हाशमी साहब ठंडा पानी पी लें, थोड़ा सा ठंडा पानी पी लें। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम। नेक्स्ट कॉल, हेलो, नेक्स्ट कॉल पे जाना पड़ेगा। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम, नेक्स्ट कॉल पे जाना पड़ेगा। जी हेलो अस्सलाम वालेकुम, हेलो हेलो अस्सलाम वालेकुम।
जी सलामकुम, मैं आपसे सिर्फ ये बात करना चाह रही थी, मैं उनकी बात सुन रही थी
हाशमी साहब
हेलो हेलो
मुझे सर ये उनसे कहना था जो वो बता रहे थे क्योंकि ठीक है भुट्टो खंबा भी खड़ा करे तो मतलब उनको वोट मिल जाता था लेकिन जब मुझे मेरा सवाल सिर्फ हाशमी साहब से है मुझे तब इतना याद नहीं है कि जब भुट्टो ने अपनी काबीना बनाई थी तो उसमें कितने आम लोग थे और भुट्टो की तो बैकग्राउंड एक फ्यूडल की बैकग्राउंड थी एंड ही वाज ऑलरेडी समवेयर इन द गवर्नमेंट जब उसने टेक ओवर किया और जब लोग उसके साथ आए हाँ उसका रोटी कपड़ा मकान का नारा बहुत था कि लोग वाकई आज भी मरते हैं जाले हैं तो यही बस मेरा सवाल उनसे है मैं ये सिर्फ अपना एक मालूमाती हवाले से मालूम करना चाहता हूँ
बहुत शुक्रिया आपका बहुत बहन शुक्रिया आपका जी कावदी माशमी साहब क्या जवाब देंगे आप
जी पाकिस्तान के बानी हजरत कायदे आजम के साथ भी यही हुआ था कि वो जो ही पाकिस्तान मार गए हेलो
हाँ जी हाँ जी मैं सुन रहा हूँ हाँ जी हेलो
जो ही पाकिस्तान मार गए वजूद में आता है तो पाकिस्तान के मखसूस लोगों के हाथ में चला जाता है और इसी तरह बदकिस्मती से ये हुआ कि भुट्टो जिसके बारे में मैंने कहा कि वो खंबे को वोट देता था टिकट देता था खंबा जीत जाता था तो जब खंबों को उसने वोट नहीं दिया था भुट्टो के इर्द गिर्द सरमायादार और सनतकार जो है वो अजूम हो गया था और भुट्टो ने भी जो वोट दिए थे वो मसलहत के तहत दिए थे और भुट्टो का और कायदे आजम का इस पाकिस्तान में जो असर हुआ मैं अपने प्यारे और अपने मौजूद मौजूदा वजीर आजम का वो असर नहीं देखना चाहता मैं जो जितनी बातें भी करता हूँ वो इसलिए करता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि पाकिस्तान के नया पाकिस्तान बनना है वो वाकियत जनाब हमारे जो इमरान खान है उनके हाथों में बने वही इमरान खान पाकिस्तान के अवाम की आखिरी होप है इमरान खान मेरी भी आखिरी होप है और मैं इमरान खान के बारे में कोई तो उसका मतलब ये होता है कि मैं इमरान खान को कहता हूँ कि इमरान खान ना बनना इमरान खान नवाज शरीफ ना बनना इमरान खान तुम जहा के जो अदवार थे उन जैसा ना बनना इमरान खान तुम वैसा इमरान खान बनो जैसा तुमने पाकिस्तान के अवाम से वादा किया
बहुत शुक्रिया आपका
जी
जी हेलो अस्सलाम वालेकुम
अस्सलाम वालेकुम माजिद भाई मैं सैयद बात कर रहा हूँ
जी सैयद
खावर साहब से मुझे ये पूछना था कह रहे थे कि इमरान खान अगर खंबे को भी खड़ा करता इमरान खान ने एक खंबा खड़ा तो किया था वजीर खजाना तो वो तो पसंद नहीं आया तो ऐसा मतलब अगर और खंबे खड़ा करता तो कोई ऐसा तो नहीं है कि और खंबे हटा के फिर वही लेकर आने पड़ते पुराने
जी कावदी माशमी साहब
चले बस यही सवाल
ये काम इंतजार कर रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान की जो वजीर इतलाक है फिरदौस आशिक अवान वो एक शिकस्त खुर्दा खातून है जो इलेक्शन में नाकाम हो गई थी और इस तरह और भी बहुत से लोग हैं जो इलेक्शन में नाकाम हो गए थे और वो इमरान उन्होंने उनको वजीर का दर्जा दे रखा है और अगर फिरदौस आशिक अवान जैसी खातून जो आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ के घुटनों में बैठती रही है वो अगर इमरान खान के घुटनों में बैठेगी तो फिर वाकई घुटनों में बैठ जाएगी और इसी तरह इनको ऐसा नहीं करना चाहिए
नेक्स्ट कॉल जी हेलो अस्सलाम वालेकुम
जी अस्सलाम वालेकुम मैं लाइन पे हूँ आपने 10 दफा मेरी कॉल काटी है
नहीं? ये कब हो गया
10 दफा आपने मेरी कॉल काटी है इस तरह तो ना करें
ये कब हो गया सर आप कौन बात कर रहे हैं सर
मैं मोहम्मद अली मेरा नाम है मैं कोई 1.25 घंटे से कॉल कर रहा हूँ और आप काट देते हैं कॉल
नहीं नहीं हम काट नहीं रहे वो रोल ओवर होती रहती है सर वो ये
ये सवाल करना था हाशमी साहब से
जी
ये बिलावल भुट्टो ये मरियम सफदर इनको ले आए क्या इनका बाप हाकिम जरदारी का बयान सुने कायद आजम को कहता है ये पागल का बच्चा है आप मुझे नंबर दें मैं अभी आपको व्हाट्सएप करता हूँ इंटरव्यू और यही अभी ड्रामेबाजी कर रहे हैं कश्मीर पे जिनके बाप दादा गद्दार थे और जिन्होंने महाजिरों की जमीनें वहाँ सारी कब्जा की जो इंडियन मियां छोड़े गए थे जिनके ये सारे सिंधी गुलाम थे और महाजिरों की पूरी जमीनें इन्होंने वहाँ पे इन्होंने कब्जा के जागीरदार बने और अरबों रुपए इन्होंने कमाए इनको मौका दें कि आके हुकूमत करें और मुल्क को तबाह करें
بہت شکریہ سر, بہت شکریہ جی. قاور نعیم ہاشمی صاحب کیا کہیں گے آپ؟ بہت شکریہ سر آپ, جی نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم.
السلام علیکم, کیسے خیریت ہے؟
الحمدللہ. کون بات کر رہے ہیں سر؟
ارشد بول رہا
ہوں. ارشد
جی, ماشاء اللہ بھائی, 2017 میں جب الیکشن